العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، قاسم الجبارين، مبير الظالمين، مدرك الحاربين، والصلاة والسلام على حبيب إله العالمين، سيد الأنبياء والمرسلين، خاتم النبيين، رحمة للعالمين، شفيع المذنبين، والمخاطب بطه وياسين، أبي القاسم محمد. وآله وعطرته وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين، سيما لا بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين، الإمام المنتظر والحجة الثاني يشر، اللهم أجل فرجه وقرب زمانه وكسر أنصاره وأهلك أعداءه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. اعلان غدیر کے تقاضے یا اعلان غدیر کے حوالے سے ہماری ڈیوٹیز اور ذمہ داریاں، لیکن سبجیکٹ یہی رہے گا، آیت بدلتی رہے گی، کیونکہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایام عزا میں 10 مجلسوں میں 11 مجلسوں میں کم از کم 5-6 مختلف آیتیں ترجمے کے ساتھ مجمع کے کان تک پہنچ جائیں. تو آج سورہ نساء آیت نمبر 64 اور 65، وما ارسلنا من رسول، ہم نے رسول کوئی رسول نہیں بھیجا. 313 رسول آئے کہ اس سے زیادہ آئے، کہ یہاں رسول میں انبیاء بھی شامل ہیں، یہ ساری بحث چھوڑیے. وما ارسلنا من رسول، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا، الا سوائے ایک مقصد کے، پرپز آف رسالہ صرف ایک ہے، لیطاع باذن اللہ، کہ لوگ ان کی اطاعت کریں. مسلمانوں میں ایک اسکول آف تھاٹ جو بہت نیا ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ رسول جو ہیں وہ جسٹ لائک اے پوسٹ مین یا جسٹ لائک اے کوریئر سروس، آئے وہاں سے میسج لیا، آپ کو ڈیلیور کیا، چلے گئے، اور کوئی تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ وہ میسج کیا ہے. پوسٹ مین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس لیٹر میں کیا لکھا ہوا ہے، خوشی کا ہے کہ غم کا ہے، کہ کیا نیوز آئی ہے، کچھ نہیں. یہ رسول کا اسٹیٹس ہے. نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں یہ بالکل نیا اسکول آف تھاٹ، لیکن بعض ایسے حالات ہیں آج کل کہ بہت زیادہ یہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. خود سے پروموٹ نہیں ہو رہا ہے، اس کے پیچھے ہے کوئی، بہت زیادہ پروموٹ بھی کیا جا رہا ہے. اور آج کی رات ایک ایسی رات ہے کہ یوزولی میں اس رات میں 3 میں سے کسی ایک چیز کو اپنی مجلس کا موضوع یا سبجیکٹ بناتا ہوں، کیونکہ آج کی رات شب جمعہ، اور شب جمعہ ہمیں 3 بہت اہم ڈیوٹیز اسلام نے دی. نمبر 1، دعا. وہ سارے پرابلم تمہارے جو 6 دن ویک میں تم نے اس سے پہلے دعا کی اور تمہاری وہ دعا قبول نہیں ہوئی یا پرابلم سالو نہیں ہوا، آج کی رات اسپیشل رات ہے دعا کے. تو یہ خود اپنی جگہ ایک بہت ڈیٹیل سبجیکٹ ہے. اور دوسرا آج کی رات کا بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہوتا ہے موت. اور تیسرا زمانے کا امام، کیونکہ وہ ایک شب جمعہ کے عین پر ہی ظاہر ہوگا۔ اچھا، اب یہ تینوں سبجیکٹ ایسے ہیں کہ ایک مجلس کیا، ایک عشرہ کیا، رمضان کے 30 دن بھی اس پہ گفتگو کی جائے تو حق ادا نہیں ہوتا ہے۔ تو میں یہ نہیں چاہتا کہ ایک مجلس میں بہت ساری باتیں آ جائیں، لیکن یہ جو آخری بات میں نے کہی اس کے لیے صرف ایک جملہ کہہ کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ ایک نیا اسکول آف تھاٹ جو پلانٹ کیا گیا ہمارے درمیان اور اس کو پروموٹ بھی کیا جا رہا اور بہت ساری فورسز اس پروموشن میں انوالو، اور اس وقت جو دنیا کے حالات بن چکے ہیں، جس کو دیکھ کر یہ محسوس ہو رہا ہے ہر پڑھا لکھا آدمی، اس کو یہ امپریشن ملتا ہے کہ ظہور کا زمانہ قریب آ رہا ہے۔ اب کسی وقت بھی زمانے کا امام ظاہر ہونا چاہیے، کیونکہ آلموسٹ وہ تمام سائن، وہ تمام نشانیاں، وہ تمام علامتیں آلموسٹ پوری ہو چکی۔ اور یہ جملہ جو ابھی میں نے مجلس میں کہا، کئی حدیثوں میں بھی آیا۔ کون سا جملہ؟ کہ بس ایسا لگ رہا ہے کہ کسی وقت بھی امام آ سکتے ہیں۔ کئی حدیثوں میں جہاں ظہور امام کی نشانیاں بتائی گئیں تو وہاں آخر میں یہ جملہ آتا ہے کہ جب یہ اور یہ اور یہ اور یہ واقعہ پیش آ جائے تو بس یہ سمجھ لینا کہ یا صبح کو امام آ رہے ہیں یا شام کو امام آ رہے ہیں۔ آلموسٹ ان میں سے ہر نشانی ہم کو لگ رہا ہے کہ پوری ہو گئی، اور اسپیشلی جب آج ہم اسلامک ورلڈ کی حالت دیکھتے ہیں اور وہاں کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے اس پہ نگاہ ڈالتے ہیں۔ ہمارے یوتھ اور ینگسٹر کا آج کل بہت ہی یہ فیوریٹ قسم کا ٹاپک ہے، سوشل نیٹ ورکنگ کی جتنی بھی سائٹ ہیں سب پہ بہت زیادہ یہ ڈسکشن چلتا رہتا ہے، کوئی بادشاہ مر گیا، کوئی ایسا انسیڈنٹ پیش آ گیا، اور فوراً کوئی نہ کوئی وہ حدیث کا ریفرنس دیکھ کر یہ پروف کرنا چاہتے ہیں کہ بس اب امام آنے والے نہیں، بس آگے سمجھیے آلموسٹ۔ یہ سب سے بڑا فتنہ حدیث میں آیا کہ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اگر کوئی ظہور امام کے لیے کوئی ٹائم پیریڈ کو فکس کر دے، ساری نشانیاں پوری ہو جائیں پھر بھی امام نہیں آئیں گے، یعنی میں پوسیبل، اور کوئی نشانی بھی پوری نہ ہو اور امام آ سکتے ہیں۔ امام یہ جو سائن آف ظہور ہیں یا ظہور کی نشانیاں، میں پھر ایک بار اس بات کو ریپیٹ کر دوں کہ اس وقت جو دنیا کے حالات ہیں پوری دنیا کے اور اسپیشلی اسلامک ورلڈ کے، اس کو دیکھ کر یہ لگ رہا ہے کہ ظہور بہت قریب آ گیا، لیکن ڈسپائٹ دیٹ، اس کے باوجود کبھی یہ نہ سمجھیے کہ بس امام کا ظہور بہت قریب ہے اتنا کہ بھائی یہ نشانیوں کے بعد امام کو آنا ہے، نہیں۔ ایک لفظ اس کے لیے روایتوں میں استعمال ہوتا ہے کہ ظہور امام میں بھی بدا ہو سکتا ہے، یعنی جیسے حکم شریعت کینسل ہو جاتا، بیت المقدس تھا پہلے قبلہ، پھر اس کو چینج کر کے کعبہ کیا گیا، اس طرح اس قسم کی چیزوں میں بھی اللہ چینج کر سکتا ہے۔ ایون، اب یہ ایون پہ غور کیجئے گا، ایون امام معصوم بھی آ کر یہ کہہ دیں کہ میرا بیٹا اس تاریخ کو آ رہا ہے، لیکن ہو سکتا کہ امام معصوم یہ جملہ کہہ دیں، ہمیں ڈیٹ دے دیں، ہم کیا سمجھیں بھائی مولا نے یہ کہہ دیا ہے، چھٹے امام نے یہ کہہ دیا، آٹھویں امام نے یہ کہہ دیا، کل رات کی میری مجلس، دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے، امام کا قول کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ امام کی زبان سے اگر کوئی جملہ نکل گیا تو یونیورس اپنے آپ کو چینج کر کے اس جملے کے حساب سے ایڈجسٹ ہوگی۔ اگر زندہ آدمی کو لے کے آئے اور امام نے کہا میں نماز جنازہ پڑھتا ہوں تو وہ مر جائے گا، اور اگر شہزادی نے کہا کہ کپڑے درزی کے پاس سلنے گئے ہیں تو جنت کا رضوان بھی آئے گا، تو یہ نہیں کہے گا میں رضوان ہوں، یہی کہے گا انا خیاط الحسنین، میں حسنین کا درزی۔ مجمع کنفیوز ہے کہ درود پڑھا جائے کہ نہ پڑھا، ہاں اب لگا کہ واقعا
कुछ आज प्रॉब्लम कर रहा है।
हाँ, इसी तरीके से आप इन्वॉल्व रहिए मजलिस में कि पता चले कि विलायती लोगों का मजमा है, विलायत के मानने वाले, तो अब कायनात को चेंज होना पड़ेगा। लेकिन इवन इमाम भी अगर आके कह दें, इमाम से मेरी मुराद है पहले 11 इमाम, मौला कह दें छठे इमाम जब अपने जमाने में थे और वो ये कह दें, ये मैं सपोज कर रहा हूं एक बात कि इस डेट को मेरा बेटा जाहिर होने वाला है, लेकिन बिल्कुल पॉसिबल है कि इमाम के डिक्लेरेशन के बावजूद जुहूर ना हो और अल्लाह उसको चेंज कर दे। जैसे अब ये बात जरा तौहीन इमाम में लगती है कि ये इमाम की शान में गुस्ताखी है, लेकिन जहूर से हटकर बाकी चीजों में आप ये रिवायतें सुनते आए हैं और एक्सेप्ट करते आए। बहुत सी रिवायतें आदमी सुनता है लेकिन उसका दिल ये कहता है कि ये रिवायत सही नहीं लग रही। बहुत सी रिवायतें आदमी सुनता है और जो मोहब्बत अहले बैत हर मोमिन के जीन्स में या डीएनए में है, वो कहती है कि नहीं ये रिवायत गलत। मगर ये जो जुमला अभी मैंने जहूर इमाम के हवाले से कहा कि फर्ज कीजिए कि आप छठे इमाम के जमाने में होते और वो कहते कि इस तारीख को मेरा बेटा जाहिर हो रहा, इवन फिर भी ये मुमकिन था कि इमाम नहीं आते। जैसे रिवायतों में है और शायद हमारी मजलिस का आज का मेन सब्जेक्ट ये बनने वाला है आगे चलकर, शायद मौत रिवायतों में है कि नहीं है कि इमाम ने किसी से कहा कि तुम्हारी या तुम्हारे नेबर की या तुम्हारे फुला फैमिली मेंबर की मौत उस दिन हो जाएगी, और नहीं हुई। पता चला कि उसने सदका दे दिया था जिसकी वजह से उसकी मौत अल्लाह ने लिखी थी, लेकिन मौत डिले कर दी उस सदके की वजह से। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं, लेकिन चूंकि ये खुद अपनी जगह फुल फ्लेज अलग सब्जेक्ट है, उधर मैं चला गया तो आज का मौजू रह जाएगा। या जैसे अब जो बात मैं कहने जा रहा हूं इस मजमे के सामने तो मैं आराम से कह देता हूं, लेकिन अगर मुहिब्बाने अहले बैत का मजमा ना हो तो फिर इसको समझाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन यह समझाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कह दिया कि तुम्हारे तकदीर में औलाद नहीं, और हुसैन ने कहा बेटा दिया बेटा दिया बेटा दिया बेटा दिया। कल की मजलिस का हमारा सब्जेक्ट था कि रसूल बहरहाल तमाम अहमे मासूमीन से भी ज्यादा अफजल है, असल विलायत उनकी है। वो जो असल विलायत है वो कह रहा है कि औलाद नहीं है, और जो उसी की फर है जो उसी रसूल का बेटा है वो कह रहा है मैंने दे दिया तो वो बेटा हो गया। रसूल का ऐलान दुरूद भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद को आगे पहुंचे। नऊज़ु बिल्लाह, रसूल का स्टेटस कम नहीं है। हमें मालूम है कि रसूल सरदार हैं इन तमाम अइम्मा के भी, लेकिन बात यह हो रही थी कि रसूल तक ने एक चीज का ऐलान कर दिया या डिक्लेयर कर दिया, लेकिन चेंज हो गई वो चीज। तो ज़हूर इमाम बहुत डेलिकेट या सेंसिटिव इशू है। ये फेसबुक पर नौजवानों के खेल कूद का कोई मसला नहीं है कि आज इमाम आ रहे हैं कल इमाम आ रहे हैं, ये निशानी पूरी हुई तो इमाम आ रहे हैं, खुला जगह ये पॉलिटिकल सिचुएशन हो गई तो इमाम आ रहे हैं। बहुत एहतियात करना, बहुत एहतियात करना। हलकल मुस्ताजिलून व नजल मोमिनून, जल्दी करने वाले हलाक होंगे। यह खुतबे का एक जुमला मैंने खाली इसलिए पढ़ा कि आज का ये असल सब्जेक्ट नहीं है, ये खुद बहुत ज्यादा टाइम चाहिए इसके लिए, और कम अज कम आज के मजलिस का जो मौजू है वो बिल्कुल अलग है। लेकिन आज रात की वजह से इतने दो चार जुमले पांच जुमले मैंने कह दिए, जल्दी करने वाले हलाक होंगे। हर मोमिन को जुहूर इमाम में जल्दी करना है। हमारी दुआ यही होती है अजल अल्लाह अजल अल्लाह अजल अल्लाह अल अजल अल अजल अल अजल। मगर नजात उन्हीं को मिलेगी जो सब्र करेंगे ईमान के साथ। यानी इतनी जल्दी नहीं करना है कि कोई फ्रॉड या धोखेबाज दुनिया के हालात से फायदा उठा के हमें मिसगाइड करे या गुमराह करे, जैसा इससे पहले हिस्ट्री में हो चुका। और जहां तक साइन ऑफ जुहूर का ताल्लुक है वो रिपीट भी हो सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि विदाउट एनी साइन ऑफ जुहूर इमाम आ भी सकते हैं। अब ये एक अलग मौजू बनेगा। तो आज की रात मोमिन को जमाने के, यानी आज की रात से मतलब स्पेशली आज ये 15 अक्टूबर की रात नहीं बल्कि हर शब जुमा स्पेशली मोमिन को इस पर बैठ के गौर करना है कि अपने दिल में जमाने के इमाम की मारिफत बढ़ाए। और मारिफत खाली इमाम का नाम याद करने का नाम नहीं है, इमाम का नाम ले लिया मारिफत हो गई। ये सारी चीजें समझे कि सच्चा इमाम आए तो ऐसा ना हो कि हम वेट ही करते रहें और इमाम का जिहाद कंप्लीट हो जाए जिसके नतीजे में हम मारे जाएं, और ऐसा भी ना करें कि इतनी जल्दी करें कि कोई झूठा आ जाए और हम उसको मान लें। यानी कूफे वालों की तरह से हमें इतनी जल्दी नहीं करना है कि इब्ने ज़ियाद आया तो लोगों ने उसी को मुस्लिम समझ लिया था। मारिफत, अब ये आज की रात दुआ, आज की रात मारिफत और आज की रात मौत। अच्छा, अब ये मौत की बात क्यों आ गई? ये आ गई विलायत के हवाले से। विलायत, अल्लाह का रसूल ले युताआ बे इज़्निल्लाह, पहले कुरान ने एक आम ऐलान किया कि हर रसूल वमा अरसलना मिन रसूल इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, हर रसूल को हमने भेजा ताकि तुम उसकी इताअत करो। इताअत कहते हैं आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो करने को, क्योंकि ये मजलिस या ये वाला पॉइंट मैं कई जगह पढ़ चुका हूं। वेस्ट में रहने वाले कहते हैं मौलाना ये तो हम नहीं माने, ब्लाइंडली तो किसी को फॉलो नहीं करना, पहले सोचना है समझना। जो कल मैं बात कह रहा था कि कोई बेनिफिट कोई फायदा हो तो बात मानना, या चलें अभी हमें नहीं पता कि फायदा क्या है या नुकसान वो बात भी मान लेंगे, लेकिन अगर पता चले कि फलां चीज में नुकसान है तो क्यों मानेंगे? नहीं, ये विलायत ये नहीं। विलायत वो है कि अगर छठे इमाम ने हारून मक्की से कहा कि जाके आग के तंदूर में बैठ जाओ तो वो जलती हुई आग में जाके बैठ गया, उसने कोई रीजन नहीं पूछा कि मौला इसका फायदा क्या है, इससे आपको क्या मिलेगा, अल्लाह को क्या मिलेगा। इमाम ने कहा आग में बैठ जाओ, वो आग में जाके बैठ गए। देखिए ये है विलायत, ये है रसूल से हमारा कनेक्शन और रिश्ता। यहां एक थोड़ी सी दाढ़ी के रखने में इतने सवाल, इतनी क्वेश्चनिंग, इतनी रीजनिंग पूछी जाती, और वहां उसको जलती आग पे बिठा दिया और उसने विदाउट एनी हेजिटेशन। एक तो ये भी है ना कि नहीं हमने इमाम से रीजन नहीं पूछा, लेकिन जरा स्लो स्लो आग की तरफ चले कि शायद इमाम रोक लें, ऐसा भी नहीं, विदाउट एनी हेजिटेशन जाके आग पे बैठ गया। यह है विलायत। और ये कुरान कह रहा है लियुताअ बिइज़्निल्लाह, उसकी इताअत करो। और फिर खास ये बात तो हर रसूल के बारे में कही गई, फिर खास जब हमारे रसूल का तस्किरा हुआ तो वो आयत जो मैंने कल तिलावत कर दी थी लेकिन आज पूरी आयतें मिला के तिलावत की कि फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अन्फुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैत, जो रसूल कह दे युसल्लिमु तस्लीमा, सर झुका के उसको मान लेना है। यह कंसेप्ट ऑफ रिसाला। और इसके लिए टाइम भी कम है तो एक बहुत मशहूर रिवायत इसको क्लियर करने के लिए या वाजे करने के लिए कि ये इताअत कैसी होती है। ये इताअत ऐसी नहीं होती है कि भाई नमाज के मसले रसूल से पूछेंगे, इमिग्रेशन के मसले रसूल से नहीं पूछेंगे, वो तो जो हमारे मन में आएगा जो जगह हमें अच्छी लगेगी वहां जाएंगे। दीनियात पढ़ाने के लिए रसूल से पूछेंगे, लेकिन कौन से स्कूल में अपने बच्चे को या कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में दाखिल कराएं इसका रसूल से क्या ताल्लुक। इताअत इसे नहीं कहते, इताअत कहते हैं उस मोमिना, वो मोमिना उम्मे खालिद नाम है, बहुत मशहूर रिवायत है, मैंने कम से कम 50-60 दफा पढ़ी है, अलबत्ता सिर्फ जिंदगी में दो बार रिवायत को कंप्लीट किया, बाकी 58 टाइम्स ये रिवायत इनकम्प्लीट पढ़ी है। इनकम्प्लीट का मतलब जहां पे वो मैसेज मुकम्मल हो गया जो मेरा सब्जेक्ट हो, लेकिन आज एक खास वजह से इसको कंप्लीट पढ़ूंगा, वो आखिरी भी एक लाइन है खाली, वो हमेशा मैं छोड़ देता था। ये मैंने इसलिए कहा कि जो लोग बहुत ज्यादा मेरी मजलिसें इंटरनेट वगैरह पे सुनते हैं और मैंने मुझे ये इंफॉर्मेशन है कि इस मजमे में भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, तो एटलीस्ट एक सेंटेंस उनको नया मिल जाए ताकि ये इंप्रेशन ना हो कि हमारा टाइम वेस्ट हो गया। उम्मे खालिद, जिनके लिए मैं एक बात जरा सा अपने सब्जेक्ट से हटकर, लेकिन उनका इंट्रोडक्शन और लेडीज के एक बहुत पुराने सवाल का जवाब। लेडीज के सवाल तो बहुत ज्यादा हैं, कभी खत्म होते ही नहीं हैं, वो तो कयामत भी आ जाएगी तो उनके सवाल चल रहे होंगे, मगर एक सवाल लेडीज बहुत पूछती कि ये जो जहूर और इमाम जमाना और उनका जिहाद और वो सारी डिटेल, खाली मर्दों का जिक्र है औरतों का जिक्र नहीं है, तो जहूर के बाद औरतों का भी कोई रोल है कि नहीं, और फिर जब इसका कोई सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं मिलता है तो लोग फिर आम से जवाब दे देते हैं कि हां भाई उनका भी रोल होगा, वही जो आजकल है पराठे पका पका के इमाम को खिलाएंगी, या ये के कॉफियां बना बना के इमाम को पिलाएंगी, या ये के लश्कर इमाम की सर्विस करेंगी, किचन को संभालेंगी। शरण तो ये रोल आज भी वाजिब नहीं है, लेकिन इसमें बात नहीं कर रहा हूं फिलहाल। तो ये है कि अपनी तरफ से जवाब के इमाम की फौज को सर्विस देंगी, रिवायतों में बहुत डिटेल के साथ इसका जवाब, बल्कि वो फिगर भी दिया गया है कि इमाम की 330 की आर्मी में इतनी औरतें होंगी और उनमें से 9 या 13 औरतें, रयाहीन और शरिया नामी किताब में पूरी रिवायत, 9 या 13 औरतों का नाम भी है। एक तो फिगर है खाली कि 52, 48, और एक है कि नहीं, नाम है कि ये और ये और ये औरतें तो खास तौर पर इमाम की आर्मी को ज्वाइन करेंगी, उनमें से एक उम्मे खालिद है, ये वाली जिनका ये वाकया। और जब इन खातून का नाम रिवायतों में आया कि ये जहूर के बाद इमाम की आर्मी को ज्वाइन करेंगी, दोबारा जिंदा किया जाएगा, तो अब एक सवाल पैदा हुआ कि आखिर इन्होंने कौन सा ऐसा बड़ा कारनामा अपनी जिंदगी में अंजाम दिया, क्या इनकी इंपॉर्टेंस है इनकी अपनी लाइफ टाइम में कि अल्लाह इनको इतना हाई स्टेटस देगा। तो एक यही रिवायत सामने आती, इमाम के पास आती, घर के बात इमाम की है, लेकिन जैसा कि मैंने कल कहा कि इमामत हमारे रसूल की रिसालत का एक हिस्सा है, तो उसूल दोनों जगह चलेगा। और आने के बाद कहती है कि मौला, मैं बहुत जल्दी यह पढ़ रहा हूं इसलिए कि जुमले आपने इतनी बार सुन लिए कि मौला मैं बहुत बीमार हूं और बहुत तकलीफ है। पहले जमाने की बीमारियां बहुत पेन किलर नहीं थे, ये पेंसिलिन वेंसिलिन तो अभी 100 साल भी इसको शायद नहीं हुए होंगे, तो ये पेन किलर नहीं थे, तक हर बीमारी बहुत तकलीफ लेके आती थी। चुनाचे इमाम ने फरमाया भी कि अगर कोई पेन और दर्द के आलम में एक रात बीमारी में गुजारे तो 70 साल के गुनाह सगीरा इससे माफ हो जाते हैं। अल्लाह जब कोई इम्तिहान लेता है तो उसका रिवार्ड और अजर भी देता है। तो अब तकलीफ बहुत, लेकिन बीमारी है, बर्दाश्त कर रही हूं। मौला मैं इस बात पे बहुत हैरान हूं कि यही प्रॉब्लम मदीने में दूसरे लोगों को था और वो उन्हीं डॉक्टर्स के पास गए जिनके पास मैं जाती हूं, वो ठीक हो गए। ऑल्दो आज की दुनिया देखिए, जगह जगह इतना रुक रुक के मुझे बेकार किस्म की डिटेल में जाना पड़ता, लेकिन क्या करूं, मोमिनीन कराम तो तैयार बैठे होते हैं कि कोई भी स्पीकर या जाकिर कोई गलत बात कहे तो फौरन उसको छूट करें, ठाए ठाए ठाए, कल एतराज शुरू हो जाते हैं। और आजकल जब से ये फेसबुक और इंटरनेट है तो अब तो विद इन सेकेंड दुनिया में बात फैल जाती, उसको समझाने में उन मोमिनीन का टाइम वेस्ट होता जिनका ये प्रॉब्लम ही नहीं है। इसलिए ये कहना पड़ रहा कि आज एक बच्चा भी जानता कि अगर दो आदमियों में सेम सिम्टम है तो जरूरी नहीं है कि दोनों की बीमारी भी एक हो सकता है इसकी अलग बीमारी हो उसकी अलग बीमारी। मगर इतनी डिटेल में जाऊंगा तो एक वाकया भी कंप्लीट नहीं होगा, जबकि वाकया इतना सुना हुआ है आपका। मौला वो ठीक होगा, मैं बीमार रही, बीमार तो ठीक, पेन, मैंने पूछा उनसे डॉक्टर से, उन्होंने कहा कि इसका एक ही इलाज है, लेकिन वो एक ऐसा इसका इलाज है कि हम तुम्हें नहीं बता सकते। उन्हें बता सकते थे, कहा बताओ तो सही क्या। कहा कि हमारे पास इसका इलाज सिर्फ शराब है, शराब या दारू, दारू कहता हूं, इसका इलाज सिर्फ दारू, दारू पी लो ठीक हो जाओगे। लेकिन हम उनको कह सकते हैं, तुम इतनी मुत्तकी परहेजगार और ऐसे शरीफ और रिलीजियस और पॉइस फैमिली की, कि तुमसे तो ये बात करते हुए भी हमको शर्म आ रही, कैसे कहें कि शराब पियो। लेकिन अब तुमने पूछ लिया तो मौला मैं सीधी आपके पास आ गई। अब ये है ब्लाइंडली फॉलो करना, ये है विलायत, ये है सूरह निसा की आयत नंबर 64 और 65। अब जैसे कल मैंने कहा था कि रसूलुल्लाह ने अपना फेवर करने वाले सहाबी को पब्लिक के सामने उसी से सवाल करना शुरू कर दी, जिसने बेचारे ने रसूल का साथ दिया, पैगंबर उसी से क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहे हैं। अब बाकी जिन्होंने रसूल का साथ नहीं दिया, रसूल ने उनसे कोई बात ही नहीं कही। दूसरी, यहां इमाम इस औरत से कहने लगे, जब डॉक्टर्स ने कह दिया तो मेरे पास क्यों आई। देखिए, इमाम की हदीसों को समझना भी बहुत अहम चीज है। आजकल जो हमारे यूथ समझते हैं ना कि कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, तमाम हदीस की किताबें हैं, सबके ट्रांसलेशन है, एक क्लिक के अंदर हमें इमाम की वो सारी हदीसें मिल जाएंगी तो हमें मर्जे की क्या जरूरत। एक कंसेप्ट आजकल ये भी है ना कि मर्जे क्या करता, कुरान की आयतें, इमाम की हदीस, इन्हीं की मदद से तो फतवा देता। तो आज तो एक क्लिक हम करेंगे और ये सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। कोई भी सब्जेक्ट ले लीजिए, रुकू के अंदर सुबहान रब्बिल अजीम एक बार पढ़ना है कि तीन बार पढ़ना है, एक आपने क्लिक किया सारी हदीसें आपके सामने आ गई। ये इतना आसान नहीं है, खाली हदीसों का ट्रांसलेशन पढ़ना मर्जियत नहीं है, इसकी मदद से फतवा नहीं दिया जा सकता है। बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व होती हैं। वन ऑफ द फैक्टर, द ओनली फैक्टर नहीं, वन ऑफ द फैक्टर, इमाम ने किस कॉन्टेक्स्ट में यह बात कही और उस वक्त इमाम का टोन क्या था। भाई रमजान में एक हदीस आप बहुत सुनते, एक औरत अपने घर की मेज रोजे के आलम में थी, दोपहर का वक्त था, समर का रोजा था, जैसे आजकल यूएसए में दिमाग गर्मी खा गया, बुरा भला कहने लगी। इमाम ने अपने घर से उसके लिए खाना भिजवाया और कहा कि उससे कह देना कि आज का लंच मेरी तरफ से, खाना खा लो। अरे हम तो फौरन टूट पड़ते खाने पर, रोजा है लेकिन इमाम अगर लंच भिजवा रहे हैं तो कौन सा रोजा, रोजा तोड़ना जरूरी है। अच्छा ये अपनी जगह बात सही, इमाम अगर कह दे तो नमाज तोड़ो, इमाम अगर कह दे रोजा तोड़ो, लेकिन खाली इस तरह से एक जुमला सुन के नहीं, समझना पड़ता कि इसका कोई बैकग्राउंड है कि नहीं। वो मोमिना गुस्से में आ गई, गालियां दे रही है, फाउल लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही है, लेकिन इतनी उसमें समझ और नॉलेज कि रोजे के आलम में इमाम ने मेरे लिए खाना भिजवाया, जरूर इसके पीछे कोई रीजन, खाना नहीं खाया, इमाम के पास गई और इमाम ने बताया कि ऐसे रोजे का क्या फायदा। यह हदीस आप सुनते हैं ना, अब अगर खाली ट्रांसलेशन पढ़ लेते तो याद था कि जी इमाम ने खाना भिजवाया तो खाना खा लो, नहीं, पहले पूरी हदीस समझना पड़ती है। यहां इमाम ने कहा कि मेरे पास क्यों आई। आम मोमिना होती आज की तरह फेसबुक पे बैठने वाली तो वो कहती कि बस इमाम ने कहा कि मेडिकल से रिलेटेड मसला मुझसे मत पूछो, वो उठ के चली जाती और जाके इत्मीनान से दारू पीती। माशाल्लाह, यहां तो मैंने औरतों को भी दारू पीते देखा अपनी कम्युनिटी की, अटलांटा की बात नहीं कर रहा हूं, आप गलत फहमी में ना पड़े, लेकिन यहां की समझदार औरत थी। फौरन इमाम से उसने कहा कि मौला मैं आपके पास इसलिए आई हूं कि मैंने अपना इमाम आपको माना है, उनको नहीं माना है। जो भी दुनिया वाले कहते रहे आप मेरे इमाम हैं, जब आप परमिशन देंगे तो मुझे वो काम करना है। क्योंकि आगे रीजन जो बता रही है वो शबे जुमा का तीसरा सब्जेक्ट बना। वाई, क्योंकि कोई भी मुझे कोई मशवरा दे, आप जैसे आपको प्रॉपर्टी खरीदना है आप रियल इस्टेट वाले के पास जाएंगे और आपको इमिग्रेशन या ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना है आप इमिग्रेशन लॉयर के पास जाएंगे और आपका कोई लीगल प्रॉब्लम आ गया तो आप एक बैरिस्टर के पास जाएंगे या अटॉर्नी के पास जाएंगे, और आपको मकान बनाना है तो आप बिल्डर के पास जाएंगे, और आपकी गाड़ी खराब हो गई आप मैकेनिक के पास जाएंगे। मगर इमाम फरमाते हैं कि ये एनफ नहीं है। मोमिना से पूछा, जब डॉक्टर ने दवा बता दी तो मेरे पास क्यों आई हो? मोमिना कहती है, इसलिए आई हूं कि कयामत के दिन जब मेरा नाम आमाल खुलेगा, बुक ऑफ एक्शन, और अल्लाह हर हर अमल के बारे में सवाल करेगा, ला युगादिरु मिन्हा कबीरतम वला सगीरा। सूरह काफ में अल्लाह कहता है, बुक ऑफ एक्शन किसका नाम, तुम्हारे बड़े से बड़े और छोटे से छोटे हर अमल का उसके अंदर तस्करा। आपको शायद याद ना हो कि आज अभी अभी आधा घंटा पहले जब आप इमामबाड़े में एंटर हुए थे तो राइट यानी सीधा पैर पहले रखा कि उल्टा पैर, कोई हैबिट होगी लेकिन एक्चुअल याद होना। वहां नामा अमाल में लिखा कि आज से 15 साल पहले जब आप जाफरी सेंटर अटलांटा में 2 मुहर्रम को आए थे तो कौन सा पैर आपने पहले रखा और कौन सा पैर बाद में, हर चीज उसके अंदर मौला। जब वो नामा अमाल खुले तो अल्लाह सवाल करेगा, ये काम क्यों किया? याद रखी, हर अमल के बारे में कयामत में सवाल है, चाहे गुनाह हो चाहे नेकी हो। कयामत में शराब के बारे में भी सवाल होगा, वाय। दाढ़ी शेव करने के बारे में भी सवाल होगा, वाय। म्यूजिक सुनने के बारे में भी सवाल होगा, वाय। और नमाज के बारे में भी सवाल होगा, वाय क्यों पढ़ी नमाज। और रोजे के बारे में भी सवाल, हज के बारे में भी सवाल। पता चला कि नमाज का मन तो नहीं था लेकिन मजलिस में आए थे, जमात नमाज हो रही थी, अगर अलग हो जाते तो लोग बुरा समझते, इसलिए आके खड़े हो गए। हर इबादत के बारे में सवाल है। तो अब मौला मैं ये चाहती हूं कि कयामत में जो सवाल अल्लाह मुझसे करे मेरा एक रिप्लाई हो। मेरे मौला ने कहा, मेरे आका ने कहा, मेरे इमाम ने कहा, हर अमल के बारे में मेरा ये जवाब। यह है विलायत, यह है विलायत हर अमल के बारे में। नमाज क्यों पढ़ी मेरे आका ने कहा। और अब बात को शॉर्ट करता हूं इसलिए कि मिसालें देने का फायदा नहीं। अभी मैं शराब पी दूं और पूछा गया शराब क्यों पीऊं, तो मैं ये ना कहूं कि डॉक्टर ने कहा था, मैं कहूं मेरे इमाम ने कहा था। या शराब नहीं पीऊं और मर जाऊं और कयामत में पूछा जाए कि सुसाइड क्यों किया, तो मेरा जवाब ये ना हो कि मैं बड़ी पुआयस हूं, मुझसे शराब पी नहीं जा रही थी, मैंने कहा अल्लाह के लिए मैं अपनी जान, नहीं। मैं कहूं इमाम ने मुझे मना किया। अपने हर सवाल का जवाब कयामत के दिन एक देना चाहती हूं, मेरे इमाम ने कहा। छठा इमाम खुशी के आलम में अपनी जगह से खड़ा हो गए, वो अबू बसीर जिनका कल नाम लिया था कि इमाम ने उनको प्रेस किया है, उनसे कहने लगे कि रिवायत के रावी अबू बसीर कि हमारा शिया ऐसा होता है जैसी ये मोमिना, एक औरत को रोल मॉडल बना रहे इमाम हम जैसे मर्दों के लिए। हर सवाल का जवाब यह है, ले युता बेइज़्निल्लाह, यह है सुम्मा ला यजदु फी अन्फुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमु तस्लीमा, हुक्म रसूल के आगे सर झुकाना। लेकिन यहां तक तो मैं बहुत बहुत पढ़ चुका हूं, बात मुकम्मल हो गई इताअत। लेकिन फिर इमाम ने उसको देखा और कहा कि तमाम डॉक्टर्स कह रहे हैं शराब पियो, और मैं कहता हूं कि ना पियो, अभी तुम्हें फायदा होगा, लेकिन जब तुम्हारी जान यहां पहुंचेगी, जब मलकुल मौत रूह निकाल रहा होगा, उस वक्त ये शराब पीने की जो तकलीफ तुम्हें बर्दाश्त करना पड़ेगी वह इस दुनिया की सारी तकलीफों के मुकाबले में बहुत ज्यादा। अभी क्यों पी रही हो शराब? बहुत पेन है, एज ए पेन किलर। ये 50 साल 60 साल की बीमारी, ये सब पेन को जमा करो, वो इंतहाई कम है उस पेन के मुकाबले में जो रूह निकालने के वक्त मलकुल मौत शराबी को देता। एक रिवायत आई है और वह कुरान की एक आयत की तशरीह भी है, जन्नत और जहन्नम, यह भी कुरान का एक सब्जेक्ट। जहन्नम के बारे में एक जगह कुरान ने कहा नारुन हामिया, वो बहुत गर्म गर्म आग है। गर्म तो आग तो होती ही गर्म है, वेरी हॉट, आग तो है ही गर्म, ठंडी आग भी कोई होती है? इमाम ने कहा कि हां, ये दुनिया की आग जहन्नम के मुकाबले में ठंडी आग है। जहन्नम की आग को 70,000 टाइम पानी से धोया गया तो टेम्परेचर कम होकर ये दुनिया की आग बनी जिसमें हम 2 मिनट भी नहीं बैठ सकते। मौला ने यही जुमला तो कहा था उस मोमिन से। उसने आकर कहा कि मौला, मेरा मन तो बहुत चाहता है कि मैं गुनाह ना करूं, अल्लाह का हुक्म मानूं, आपके ऑर्डर्स को फॉलो करूं, लेकिन क्या करूं जब गुनाह का टाइम आता है, गुनाह हो जाता। ये हम लोगों का भी प्रॉब्लम है, गुनाह नहीं, बहुत पुराना डायबिटिक पेशेंट हूं, मजलिसों में शायद इमाम का जिक्र नऊज़ु बिल्लाह कम किया है, अपनी शुगर का जिक्र ज्यादा किया है, बहुत पुराना, बहुत दिल कहता कोई ऐसी चीज नहीं खाना है जो शुगर बढ़ाए, लेकिन जब दस्तरखान पर आप लोग, अच्छा अटलांटा में तो आदत नहीं है लोगों की, लेकिन जहां और दस्तरखान पे लोग इनवाइट करते हैं और एक से एक अच्छे खाने होते हैं, हम घास खाएं वो बिरयानी खा रहा हो, ये तो बर्दाश्त नहीं होता, हाथ बढ़ जाता, रोज आना इरादा करते हैं, फिर हाथ बढ़ गया, शुगर घर जाके चेक की, बहुत ज्यादा थी, नहीं कल से नहीं खाएंगे, और मालूम है कल आया तो उससे डबल खा लिया। तो खुलासा ये है कि वो कह रहा है कि मौला मैं इरादा करता हूं, जैसे आपने नमाज के लिए मस्जिद सुनी, इरादा करेंगे अब कल से फजर की नमाज कजा नहीं करना, लेकिन सुबह का वक्त आएगा नमाज कजा हो जाएगी। कल से शेव नहीं करना, लेकिन सुबह पहुंचेंगे बाथरूम के अंदर या वॉशरूम में तो खुद ब खुद हाथ रेजर की जाने बढ़ जाएगा। कल से गाने नहीं सुनना, लेकिन मौला मैं कंट्रोल नहीं कर पाता हूं। इमाम ने कहा मत कंट्रोल करो, गुनाह करो, गुनाह करो, लेकिन पहले एक काम कर लो, अपने किचन में जाओ और एक आग जलाओ बहुत ही हाई टेम्परेचर वाली, और उसमें जाके बैठे जाओ, देखते रहो कि कितने मिनट आराम से बैठ सकते हो। जैसे लोग हमारी मजलिस में वॉश देखते हैं ना, कितने मिनट बाकी हैं, मसाइब पर आने वाले हैं कि नहीं आने वाले, अभी नहीं आने वाला हूं मसाइब पे, अभी खासी मजलिस बाकी है, तो खैर कहा बैठ जाओ, जितनी देर वो आग को बर्दाश्त कर लो उतनी देर का गुनाह कर लेना। भाई अल्लाह क्या करेगा तुम्हारे गुनाह के बाद, तुम्हें आग में जलाएगा? कह दो खुदा बंदा इतनी आग तो मुझसे बर्दाश्त है, पांच मिनट की आग तो मैं। और फिर इमाम ने कहा यह याद रखो, ये दुनिया की आग है, जहन्नम की आग को 70,000 टाइम पानी से धोया गया तब ये आग बनी, अगर इसमें एक मिनट भी नहीं बैठ सकते तो क्या समझ के गुनाह कर रहे हो? तो इमाम ने फरमाया उस मोमिना से, कौन? जिसने इस तरह से इमाम को फॉलो किया कि जब आखिरी इमाम आएगा इन तमाम इमामों का वारिस, तो ये खातून, ये काबिले एहतराम मोमिना जिंदा करके उनकी फौज में शामिल की जाएंगी। आप भी ऐसे बने, हम भी ऐसे बने, फिर देखिए कि किस तरह से, जो ज़ियारत में हम जुमला कहते हैं कि जलल्लाहु ताला ज़ुहूरक, अल्लाह आपके ज़ुहूर को जल्दी करे और हमें आपके साथियों में शामिल करे। पहले अपने आप को ऐसा बनाएं, फिर देखिए कि कैसे लश्कर इमाम में आप शामिल नहीं होते हैं। तो इमाम ने फरमाया उस वक्त, ये सारी तकलीफ जिंदगी भर की एक तरफ, पहले जमाने में वो स्केल होते थे ना जिसमें दो पल्ले होते, शायद गुजरात के गांव में या अहमदाबाद की किसी पुरानी दुकान पे अब तक वो हो, हर जगह डिजिटल स्केल ना आया। कहा सारी जिंदगी का पेन एक तरफ और मलकुल मौत रूह निकालते वक्त जो तकलीफ देगा वो एक तरफ, वो ज्यादा होगी और बहुत ज्यादा होगी, इसलिए तुम ये शराब ना पीना। और यहां पर शेख अब्बास कुम्मी, शहीद दस्ते गैब शिराजी और हमारे जितने उलमा ने मौत के मौजू पे बुक्स लिखी, उसमें एक वाकया कोट किया कि खाली ये मसाला नहीं, एक और भी मसाला यहां पे शराब के साथ आ रहा, शराब यानी दारू, खैर शराब भी लोग जानते होंगे। अब मैं दारू के ऊपर आज की मजलिस नहीं पढ़ रहा हूं, क्योंकि उस वाकये के अंदर एक और बहुत अहम मैसेज, फुज़ैल इब्ने अय्यास अपने जमाने के मशहूर डाकू, कुरान की एक आयत सुनकर, अलम यअने लिल्लज़ीना, एक आयत सुनकर सूरह हशर की चेंज हो गए और फिर बड़े नेक और मुकद्दस बुजुर्ग बने। लेकिन चूंकि हमारे तमाम उलमा ने उनका वाकया कोट किया, इसलिए उस वाकये को मैं पढ़ रहा हूं, गर्चे इमाम का वाकया नहीं या किसी मर्जी का वाकया नहीं। उनके पास फिर पूरी इस्लामिक वर्ल्ड से लोग इल्म हासिल करने आते थे, उस जमाने का हौजा, ऐसे ही एक स्टूडेंट उनके पास था और बहुत ही सिंसियर, और बहुत ही रिलीजियस और बहुत ही मेहनत करने वाला, लेकिन पता चला कि वो बीमार हो गया। पहले जमाने की बीमारियां बहुत टाइम लेती थी, ये खुद अपनी जगह एक आर्गुमेंट या डिस्कशन है। आजकल की मौत अच्छी है कि उस वक्त की मौत अच्छी थी? आजकल तो अचानक मौत आती है, कोई आपसे मोबाइल पे बात कर रहा है, पता चला मर गया। और पहले ये कि नहीं 6 महीने 8 महीने 2 महीने 1 साल बिस्तर पे रहा, वसीयत का मौका भी मिला, तौबा का मौका भी मिला, अपने गुनाहों को माफ करवाने का मौका भी मिला। आजकल तो कोई चांस ही नहीं होता और आदमी मर जाता। ये बात भी आज की मजलिस में बहुत अहम एक पॉइंट बनने वाली है अगर टाइम रहा आखिर में। खुलासा यह है कि पता चला बीमार, जाते रहे हर तीसरे चौथे दिन उसको देखने के लिए। आखिर एक दिन जब ये मस्जिद में दर्श दे रहे थे, उसी रिलीजियस स्टूडेंट की जानिब के घर की घर से मैसेज आया कि अब उसका आखिरी वक्त करीब आ गया और बस मरने वाला है, इस वक्त आप आकर एक बार उसके लिए दुआ कर दें। बुजुर्ग नेक मुकद्दस लोग, इनका प्रेजेंस भी मरने वाले को फायदा देता और इनकी दुआ भी फायदा देती। खाली प्रेजेंस भी फायदा देता, प्रेजेंस। चुनाचे एक ऐसा नौजवान जो इनका स्टूडेंट भी रहा, तो एक आम मोमिन का हक है, इसका तो ज्यादा हक है, चले गए, अपना दर्स बंद किया और चले गए, उसके करीब गए और जो आखिरी वक्त में सबसे अहम चीज है उससे कलमा पढ़वाया। कह दो कि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अभी दूसरे कलमे के दूसरे पार्ट पे तो पहुंचे ही नहीं कि वो मरने वाला, वो नौजवान जो बहुत बुरी हालत में, तकलीफ दर्द पेन, एक बार इनकी जानिब देखता है और कहता है कि मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। अच्छा मरता हुआ आदमी, उसको अपने सेंसेस पे इतना कंट्रोल भी नहीं होता है, दोबारा उसे रिपीट किया। तीसरी मर्तबा जब कहा कलमा पढ़ो तो वो गुस्से के आलम में बैठ गए, उसके बदन में ताकत नहीं थी, उठ के बैठ गए और कहने लगा कि नऊज़ु बिल्लाह, ये नॉनसेंस बातें बंद करें और निकल जाए मेरे कमरे से, मैं कह चुका हूं कि मैं नहीं पढ़ूंगा कलमा। अब इतना उसने कहा, एनफ का फुज़ैल इब्ने अय्याज़ निकले। अभी उन्होंने डोर को क्रॉस किया था कि घर वालों के रोने की आवाज आई, दैट मीन्स वो नौजवान मर गए। अब अगर एक घंटे के बाद उसके मरने की खबर आती तो सोच सकते थे कि शायद उस वक्त गुस्से के आलम में यह कहा, बाद में तौबा कर ली होगी, यहां तो सेकेंड मर गए। यानी ऐसा आदमी जिसे मरते वक्त कलमा भी ना मिला, घर आ गए बहुत परेशान, वाई ऐसा नेक, ऐसा रिलीजियस, दीन का तालिबे इल्म और कलमा भी नहीं, बस अल्लाह से रो रो के दुआ की, खुदा बंदा किसी तरह मुझे इसका रीजन पता चल जाए। उसके मौत के बाद पहली शबे जुमा, आज आपके घर की भी ये स्टोरी होगी, इससे डिफरेंट, ये तो नहीं लेकिन इससे मिलती जुलती। आज की रात शबे जुमा है, आपके जितने मरहूम दुनिया से जा चुके हैं, बल्कि गालिबन गुजराती में कहते भी हैं जो लोग गुजर चुके हैं, वो सब आज की रात आपके घरों में आएंगे। डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं, वो इसलिए आएंगे कि आपसे रो रो के ये कहेंगे कि हमारे लिए कोई नेकी भिजवा दो। शबे जुमा रूहें आजाद की जाती हैं कि जाओ अपने घर वालों के पास। इनके ख्वाब में भी वो स्टूडेंट आया और बहुत बुरी हालत में देखा। अब टाइम भी नहीं है बयान करने को और आपने कई उलमा से ही वाकया सुना हुआ होगा, बहुत अजाब। अजाब पे एक आध मजलिस तफसील से आएगी, वहां पे मैं जरा सारा बताऊंगा कि किस तरह का अजाब है। अभी तो खैर बहुत ही बुरी हालत, घबरा के कहा कि तेरी हालत इतना अजाब, देखो तूने कलमा नहीं पढ़ा था ना, उसका नतीजा ये निकला। रीजन क्या था? का ये मरने के बाद पता चला कि मैं 3 गुना ऐसे करता था, इसके अलावा बाकी पूरी जिंदगी मेरी थी, बल्कि बहुत रिलीजियस, 3 गुना ऐसा करता था जिसके नतीजे में मेरे ऊपर ये अजाब आया कि कलमा भी नहीं और उसके बाद तो फिर पनिशमेंट। नंबर 1 यही चीज, मैं शराब पीता था, छुप के लोगों से, लोगों को पता ना चले। घर में बैठ के कितने ही ऐसे लोग भी शराब पीते होंगे जो पब्लिक के सामने बड़े रिलीजियस और पॉइस समझे जाते हैं। कहा कि शराब, मरने के बाद पता चला कि ऐसा आदमी आखिरी वक्त में कलमे से भी महरूम हो जाता। दूसरी बात यह थी कि मेरे दिल में जेलेसी बहुत थी। जब मैं किसी इंसान को देखता था कि अल्लाह ने उसे कोई नेमत दी, नेमतें तो अल्लाह की तरफ से मिलती, अदो रीजन होते, या अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है, या अल्लाह की तरफ से आपका एक ट्रायल है, या अल्लाह आपके किसी नेक अमल से खुश हुआ, या आपका इम्तिहान लेना। बहरहाल नेमतें मिलती है, किसी का अच्छा मकान, किसी की अच्छी गाड़ी, किसी को अच्छा जॉब, किसी का अच्छा बिजनेस, किसी की अच्छी लाइफ। ये लेडीज का बड़ा प्रॉब्लम है, किस तरह से हस्बैंड एंड वाइफ को आपस में लड़ाया जाए। जो किसको लड़ाएंगे, जो बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, जो ऑलरेडी लड़ रहे हैं उनको क्या लड़ाएंगे। तो अब ये जो मसले होते हैं हमारे यहां का, आप तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे बच गए होंगे। बहुत से लोग यही कहते हैं मौलाना वेस्ट में आ गए, सास बहू के चक्कर से हमको नजात मिली। लेकिन ये कि हमारे यहां सास और बहू का अपना टेंशन इतना नहीं होता जितना ये बीच के अंदर तेल डालने वाले और फ्यूल प्रोवाइड करने वाले, हसद की वजह से, जेलेसी, जेलेसी। ये इतना बुरा गुनाह है हसद का, किसी की नेमत पे कभी हसद ना करें। ये इतना बड़ा गुनाह कि नेकियों में सबसे टॉप की नेकी क्या है, तो गुनाहों में सबसे टॉप का गुनाह क्या। दो ऐसे एक्शन है इंसान के जिसके लिए सेम हदीस आई, एक नेकी का सवाब बताने के लिए, एक गुनाह को बताने के लिए, सेम वर्डिंग। हसद के लिए हदीस कि जो आदमी किसी से हसद करता, इन्नल हसद याकुलुल हसनात कमा ताकुलुल नार, जिस तरीके से आग लकड़ी को खा जाती है, लकड़ी को आग में डाल दें, आग लकड़ी को खत्म कर देगी, उसी तरह हसद तुम्हारी सारी नेकियों को खत्म कर देता। नमाजें पढ़ते हैं और सवाब गया, हज करते हैं और सवाब जाय हो गया, इबादत करते हैं और सवाब जाय हो गया, शबे जुबा दुआए कुमेल से सूरह यासीन से लेकर हर इबादत करते हैं और सवाब जाय है हसद की वजह से। और इसी तरीके से अब ये देखिए, ये गुना, ये जो वर्डिंग है ना, ये वर्डिंग एक और हदीस में आई, और वो ये कि जिससे अंदाजा होगा कि इस्लाम ने हसद को कितना बड़ा गुनाह समझा, और वो ये है कि हुब्बु अलीन याकुलु सय्यात कमा ताकुलु नारुल हतफ, अली की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। वहां गुनाह खत्म होते हैं मोहब्बत अली के नतीजे में, हसद के नतीजे में नेकियां खत्म होती हैं। यानी इबादतों में अगर मोहब्बत अली टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो गुनाहों में हसद टॉप ऑफ द लिस्ट है। और अहले बैत से जो इतनी दुश्मनी और अदावत की गई और मोहब्बत अली को मिटाया गया, उसका रीजन भी हसद था। ये इतने अच्छे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों नहीं बन सकते, ये हसद का जज्बा था। ये आलम के लिए सारी सारी रात तड़पते थे और नींद नहीं आती थी, अली को आलम न मिले हमें आलम मिले, ये हसद ही है। तो अब ये है कि कहा कि ये गुनाह मैं करता था। जब किसी को अल्लाह ने कोई नेमत दी, मैं जल रहा हूं आग में, क्यों मिली इसे ये नेमत, किसी तरह छिन जाए। और तीसरा ये कि मैं गीबत बहुत किया करता था, शराब, हसद और गीबत। जहां बैठा किसी न किसी मोमिन की बुराई। याद रखिए कि अभी तक, टिल नाउ, आगे नहीं कह सकता फ्यूचर में क्या होने वाला है, टिल नाउ, शराब पीने वाले अभी तक इतना रिस्पेक्ट करते हैं कि इमामबाड़े में बैठ के शराब नहीं पिएंगे और इंशाल्लाह कभी भी नहीं पिएंगे। लेकिन दुनिया इतनी खराब हो गई, फिर भी आपको इमामबाड़े में शराब नजर नहीं आई, मस्जिदों में लोग शराब नहीं पिएंगे, चाहे बाकी हर जगह पिए, पब और शराब खाने में और अपने यहां बर्थडे के फंक्शन में और शादी ब्याह की तकरीब में या डिनर के ऊपर वो लोग आपने देखे नहीं है, इसलिए आपको शायद मेरी बात अजीब लगे, लेकिन इस दुनिया में साहिबान ईमान की बात कर रहा हूं। यह गुनाह बहुत बदतरीन गुनाह है, लेकिन गुनाहगार को भी पता कि मस्जिद की एक रिस्पेक्ट, इमामबाड़े की एक रिस्पेक्ट, खाना काबा की एक रिस्पेक्ट। अभी हाल ही में एक साहब ने हज किया और उसके बाद एक मोमिन नहीं है, एक मुसलमान, अपना एक सफरनामा लिखा हज का, तो उसके अंदर लिख रहे हैं, देखिए जरा आदमी कितना बेहया बन जाता, कि मैं अरफात और मीना गया, 5 दिन बहुत ज्यादा थक गए। अरफात और मीना के प्रॉब्लम तो होते ही, चुनाचे अपने घर आते ही पहला काम मैंने ये किया कि फ्रिज खोल के शराब की बोतल निकाली, पूरी एक बोतल खत्म की, तब जाके मुझे सुकून हासिल हुआ। ये इख्तिताम अपने हज का इस बात पे कर रहे हैं और बड़े फख्र के साथ ये लिख रहे हैं, मगर इसका मतलब ये हुआ कि अराफात और मीना में इनकी भी हिम्मत नहीं हुई शराब पीने की, जो इतना बेहया आदमी कि गुनाह इतना बड़ा करके लिखकर पब्लिक के हाथ में दे दे, ये अभी तक है ना। लेकिन गीबत कैसा गुना, इमामबाड़ों में भी होता, मस्जिदों में भी होता है, करबला में इमाम हुसैन के रोजे पे भी होता है, खाने काबा के सामने बैठ के भी ये गुनाह किया जाता। शराब सबसे बदतर गुनाहों में से एक, मगर फिर भी गुनाहगार भी इतना समझता है कि ये शराब यहां नहीं पी जाएगी, ये रिस्पेक्ट के खिलाफ है। गीबत को ऐसा गुनाह बना दिया गया कि नमाज जमात से पहले लोग बैठे हैं तो गीबत हो रही, नमाज जमात के बाद खत्म हुई नमाज जमात और गीबतें हो रही, मजलिस से पहले गीबतें हो रही है, मजलिस के बाद गीबतें हो रही। और वो कह रहा है कि पता चला कि ये 3 गुना ऐसे हैं कि इसका करने वाला आखिरी वक्त में कलमे से भी महरूम हो जाता, एक दारू पीने वाला, एक हसद करने वाला, एक गीबत करने वाला। और कितने ज्यादा हमारे यहां ये गुनाह कॉमन। अब सुनिए एक बात, आखिरी बात, इसमें भी मुझे एक बहुत फेमस स्टोरी पढ़ना थी लेकिन अब आज वक्त नहीं है, तो इंशाल्लाह कल। अभी सिर्फ एक आखिरी बात, किसी मोमिन का बाप या किसी मोमिन की मां कैद हो जाए, गिरफ्तार हो जाए, जेल में भेज दी जाए, कितना परेशान होगा, कितनी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इनको जेल से निकाला जाए, बड़े से बड़ा लॉयर करना पड़े, बहुत ज्यादा महंगी फीस देगा उस वक्त। या आजकल वालिदैन की इतनी रिस्पेक्ट नहीं है, हो सकता है शुक्र का सिजदा अंजाम दे के अच्छा है मां की बकबक चिकचिक से नजात मिली, पड़ी रहे जेल में। तो ये ऐसा ही होगा जो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता, बीवी से मोहब्बत करने वाले ही मां को जो है डिग्रेड करते, तो चले उसकी बीवी अगर जेल में गिरफ्तार हो जाए। और किसी से तो आदमी मोहब्बत करता है, जिससे मोहब्बत करते वो जेल चला जाए। और मालूम हुआ कि कैद के आलम में है और कैद भी ऐसी के कैद में उस पर टॉर्चर किया जा रहा। अब आजकल तो दुनिया उल्टी हो गई है, बहुत सी जगह पे जेल में ज्यादा ऐशो आराम मिलते हैं, इतना अपना घर में भी नहीं मिलता। लेकिन आप आए तो इंडिया से है ना, कुछ पाकिस्तान के लोग होंगे मेरी तरह, इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता, ऐसी जेल होती है कि नानी याद आ जाती। ये मेरी समझ में नहीं आया कि हमेशा नानी क्यों याद आती है, दादी क्यों याद नहीं आती। खैर खैर, वो होगी कोई ऐसी नानी इस्लाम में या तारीख है इस्लाम में। अच्छा, तो अब खुलासा ये कि जेल में है, खाली जेल नहीं है, बहुत टॉर्चर के साथ, जिससे भी मोहब्बत है। मां बाप तो मैंने इसलिए कहा कि वैसे नेचुरली इनसे मोहब्बत होती, कितनी कोशिश करेगा आदमी, लॉयर अलग लेगा, अपने ताल्लुकात अलग इस्तेमाल करेगा, जायज और नाजायज को छोड़े, हो सकता है जेल में वहां पैसे वैसे दे के, रिश्वत वगैरह दे के उनके लिए फैसिलिटी लेना चाहे, अपनी हद तक पूरी कोशिश करेगा। लेकिन ये जर्नल बात कर रहा हूं, मां मर गई, हमको भी पता है, हम मां तो हर वक्त इंसान के साथ गुनाहगार थे, बाप मर गया गुनाहगार था, और जिससे मोहब्बत है वो मर गया गुनाहगार, कहां गया, जेल में गया, सख्त तरीन जेल में गया। ये दुनिया की जेल तो क्या होगी जो कब्र की जेल, اور اگر عذاب آ رہا ہے تو سخت ترین عذاب آ رہا ہوگا. دنیا میں کیا ٹارچر ہوتا ہے جو قبر کے اندر عذاب دیا جاتا ہے گناہگار کو؟ کوئی فکر ہے؟ کوئی پریشانی ہے؟ کچھ ان کو اس قید سے رہا کرانے کے لیے کوئی انسان کوشش کر رہا ہے؟ پاکستان میں میں پرسنلی جانتا ہوں کیونکہ شہر کراچی سے میرا تعلق ہے. کراچی میں تو بہت سے بے گناہ بھی قید ہو جاتے ہیں. اولاد قید ہو گئی جوان بیٹا اگر باپ بوڑھا، ماں قید ہو گئی اگر بیٹا جوان، مکان تک لوگوں نے بیچ دیے ہیں تاکہ لائر کی فیس اور کورٹ کی فیس کسی طرح ان کو رہا کرانا. پراپرٹی آدمی سیل کر دیتا ہے صرف اس لیے کہ جیل میں ہے، یہ برداشت نہیں ہو رہا. اور جو ماں باپ یا جو اولاد گناہوں کی وجہ سے قبر کی قید میں ہوں گے، مولا کا جملہ ہے کہ قبر کیا کیا ہے؟ قبر ان القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفر النار. جنت کا باغ بھی ہے کچھ لوگوں کے لیے، کچھ کے لیے جہنم کا سخت ترین عذاب اسی قبر میں. ان کو کیسے رہا کرانے کی کوئی فکر ہے؟ اور کوئی رات نہ سہی تو شب جمعہ اسی لیے بنائی گئی ہے کہ کم از کم آج تو یاد کر لو اپنے اس مرحوم کو جو خدا معلوم قبر میں کس حالت میں ہے. یوم تبلا سرائر، قرآن نے قیامت کے لیے کہا، قیامت میں ہر آدمی کا سیکرٹ کھول دیا جائے گا. قبر میں تو ہمیں نہیں پتا نا. امید ہے کہ مومن ہے تو اچھی حالت میں ہوں گے، لیکن کیا ابھی 50-50 چانس تو ہے نا. فکر ہے یہاں پہ؟ کوئی اپنا مکان بیچتا ہے اپنے ماں یا باپ کے گناہ کو معاف کرانے کے لیے؟ ایک رات، آج کی رات دو رکعت نماز یا حدیث والدین پڑھنا کچھ لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا. ایک دو رکعت نماز ویک میں ایک دن، وہ ذرا مشکل ہو جاتا. کوئی احساس ہی نہیں کہ جیل سخت ترین جیل، اور جیل کا عذاب سخت ترین عذاب. دنیا کا کوئی عذاب یا کوئی ٹارچر قبر کے کا تو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا. آج کی رات شب جمعہ، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان خود بھی اپنے آپ کو چیک کرے، ایسا نہ ہو کہ ان کی مدد کرتے کرتے خود اتنے گناہ کر کے جائیں کہ پتہ نہیں قبر میں ہمارا کیا حشر. مگر ان کی بھی مدد کرو جو جا چکے ہیں، اور ان کو تو ہمارے علاوہ اور کون یاد کرے گا؟ دو رکعت نماز حدیث والدین تو میں نے بطور مثال کہی، یہ تو ایزیسٹ عمل ہے جو ہر آدمی کر سکتا، اور خاص طور پر اٹلانٹا کے رہنے والے. کہ بھائی اٹلانٹا میں کیا ایسی خاص بات ہے، یہاں لوگ بہت والدین کے نافرمان ہیں. نہیں نہیں، یہ مسئلہ نہیں. میں نے سنا ہے بلکہ پورے ویسٹ کی یہ حالت ہے. ڈرائیو کر کے لوگ آتے ہیں، کوئی 40 منٹ کی ڈرائیو، کوئی 30 منٹ کی ڈرائیو، کوئی 20 منٹ کی ڈرائیو، نیئرسٹ پہ غالباً 10 منٹ کی ڈرائیو تو ہوگی. تو نماز حدیث والدین تو کار چلاتے ہوئے بھی آدمی چلتے ہوئے حالت میں یہ نماز پڑھ سکتا ہے، ٹائم بھی الگ سے نہیں دینا. وہ تو آپ کو مسئلے معلوم ہیں، علماء کرام آپ کی رہنمائی کرتے ہیں کہ سنت نماز چلتے پھرتے بھی پڑھی جا سکتی ہے. ہاں، وضو کرنا ہے اور قبلے سے نہیں، قبلہ نہیں اور باتیں نہیں کرنا، لیکن اتنی فیسلٹی کے باوجود. اب یہ خالی نماز حدیث والدین موضوع نہیں آج کا، موضوع ہے کہ والدین. اور والدین اس لیے میں نے کہا کہ اکثر والدین کا انتقال پہلے ہوتا ہے پھر اولاد. ہو سکتا ہے کسی کا یہی کیس، وہ خود بوڑھا ہو، اس کے جوان دنیا سے جا چکے ہیں، بھائی بہنیں چچا خالہ پھوپھی یہ سارے کے سارے، اور اولاد. فکر کہ وہ جیل میں ہیں مرنے کے بعد، یعنی 50-50 چانس. کوئی مدد کرو ان کی. اور جن کے گناہ ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمیں پتا ہے کہ ہماری ماں نماز فجر نہیں پڑھتی، دنیا کے سامنے کہنا بھی حرام ہے، لیکن خود تو جانتے ہیں نا کہ اس کی سزا برداشت کر رہی. تو آج کی رات، اور یہ وہی بات ہے جو گھوڑے والے واقعے کے آخر میں آئی تھی، وہی آج کی تقریر کے آخر میں بھی آ گئی. یہ دنیا کی جیل اور اس کا ٹارچر تو ہم دیکھتے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آج کل جب میڈیا اتنا فاسٹ ہو گیا، کتنے، میرا خیال ہے میں نے کبھی چیک نہیں کیا، لیکن یوٹیوب یا اس ٹائپ کی سائٹس پر کتنی ایسی چھوٹی چھوٹی کلپس اور فلمیں بھی ہوں گی. یہ اتنا ٹارچر، قبر کا عذاب آپ نے نہیں دیکھا لیکن اس نے دیکھا ہے. कि जिसकी हर बात पे हम आंखें बंद करके यकीन करते हैं, हमारी आंख किसी अजाब को देखे ये छोटा, और अल्लाह का रसूल अगर कह दे, इमाम मासूम अगर कह दे कि बेनमाजी को ये अजाब मिल रहा है, गीबत करने वाले को ये अजाब मिल रहा है, गाना सुनने वाले को ये अजाब मिल रहा है, शराब पीने वाले को ये अजाब मिल रहा है, अपनी आंख वाले अजाब के मुकाबले में ये अजाब बड़ा है, क्योंकि उसने कहा है जो कभी गलत नहीं कह सकता। ये यकीन होना चाहिए, यह है विलायत, यह है रिसालत, यह है इमामत, अब वो कह रहे हैं। मगर ये वो जिम्मेदारी जो इस्लाम ने भी हम पर आयद की है और कॉमन सेंस भी कहती है। मां बीमार हो जाए या दुनिया की जेल में जाए तो कोशिश बहुत अच्छी चीज है, मगर उससे ज्यादा ये कब्र की कोशिश, ये जिम्मेदारी है, इस्लाम और अकल दोनों कहती है। बल्कि बाद लोगों के वालिदैन तो शायद अपनी औलाद से ये वादा भी लेते हैं कि बेटा हमारे बाद ये ख्याल भी कर दें, और नहीं लेते तो लेना चाहिए। ये बात अब कल आगे बढ़ेगी। वालिदैन से किए हुए वादे बहुत अहम होते हैं, इस्लाम में हर वादा अहम, लेकिन वालिदैन से किए हुए वादे। जिस वक्त हुसैन को मदीना जाने से निकलने से रोका जा रहा, करबला जाने से रोका जा रहा था, तो आका हुसैन ने वन ऑफ द रीजन ये भी बताया कि मैंने अपने नाना से वादा किया और मैंने अपनी मां से वादा किया। वादाए तिफली जो मरसियों में आता है कि मेरा बचपने का वादा है, आज का भी नहीं। जरा सी मसाइब की तरतीब में बदल रहा हूं, यानी करबला पहुंचने के मसाइब अब कल रात को आएंगे, उसका रीजन मैं कल ही बताऊंगा, उसका एक रीजन भी। जब हुसैन मदीने से जा रहे थे तो बहुत सारे लोगों ने आके हुसैन को मशवरा दिया और रोका। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का वाकया तो मशहूर है, हुसैन से कहा, हुसैन मैंने तेरे बाबा का जमाना देखा और उस शहर कूफा को भी जानता हूं, इराक की जानिब न जाना, ये लोग बड़े बेवफा हैं। अब मैं बात बहुत शॉर्ट कर रहा हूं क्योंकि आज वक्त खासा गुजर गया, शुरू की दो तीन तारीखों में मसाइब अगर कम भी हुए तो इंशाल्लाह आखिरी मजलिसों में उसकी कमी को पूरा कर दूं। जब हुसैन ने कहा मुझे जाना है, ये मेरा नाना से वादा, तो एक जुमला अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने बड़ा अजीब कहा, हुसैन अगर जा ही रहा है तो औरतों को लेके ना जा। इससे पहले कि आका कोई जवाब दे, पर्दे के पीछे से ज़ैनब कुबरा की आवाज आई और बहुत जलाल वाली आवाज, ऐ इब्ने अब्बास, बहन को भाई से जुदा कर रहा है, अभी से ज़ैनब की मौत का सामान कर रहा है, अरे भाई से जुदा होकर ये बहन मदीने में जिंदा कैसे रहेगी। शहजादी आज तो खाली एक तसव्वुर आपने किया कि मैं भाई से जुदा हो जाऊं तो मर जाऊंगी। जब असरे आशूर हुसैन आए होंगे और कहा होगा, ज़ैनब मेरा आखिरी सलाम लो, आज 55 साल का भाई और बहन का साथ तो छूट रहा है, इस बहन के दिल पे क्या कयामत गुजरी होगी। और भी कई लोगों ने, उम्मे सलमा ने रोका, उम्मे हानी भी जिंदा थी, हुसैन की सगी फूफी, मौला अली की बड़ी बहन, यही जुमला तो कहा कि बेटा मैं इस खानदान में बुजुर्ग हूं, सफर का इरादा न कर, इसलिए कि 3 दिन से मैं जिनों के रोने की आवाज सुन रही, जब तेरी मां दुनिया से गई थी तब भी ये जिनों का नोहा मैंने 3 दिन सुना, जब तेरा बाबा दुनिया से गया था तब भी ये नोहा मैंने 3 दिन सुना, जब हसन दुनिया से गए थे तब भी ये नोहा मैंने सुना, हुसैन इस वक्त मदीने से न जा। और फूफी को भी यही जवाब दिया, नाना से और मां से वादा किया हुआ, मगर ये वादे थे जो हुसैन ने किए, जो ये वादे थे जो नाना और मां से हुसैन ने किए थे, उन्होंने वादा लिया था। एक वादा हुसैन ने किसी और से भी किया था, मरहूम मौलाना गुलाम असगरी साहब खतीब आले मोहम्मद अक्सर ये जुमला पढ़ते हैं, जो शहजादे अली असगर के मसाइब में मैं दोबारा भी पढ़ूंगा, और वो ये है कि जब फातिमा सुगरा को ये यकीन हो गया कि बाबा मुझे अपने साथ नहीं ले जा रहे, تب صغرا ایک بار رباب کے پاس آئی اور کہا اما رباب میری طبیعت خراب تھی، میں بیمار ہوں دو تین ہفتے سے. جب کوئی بیمار ہوتا ہے نا تو بہت ہی چھوٹا بچہ یا نیو بورن بیبی کے قریب نہیں جاتا، تو اصغر کو تو اب تک میں نے دیکھا بھی نہیں. اب جب آپ جا رہی ہیں اور میرا اصغر بھیا جا رہا تو اما کم از کم ایک بار تو اصغر کو میری گود میں دے دیجیے. یہ بہن کسی طرح سے اس بھائی کو اچھی طرح سے دیکھ لے. اصغر کو گود میں لیا، اصغر کو بوسا دیا ننی صغرا نے، اور ایک بار ایک جملہ کہا، اصغر بھیا سب مجھے چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا تم بھی چلے جاؤ گے؟ اب بہن کی فریاد اصغر نے کچھ اس طرح سنی کہ ایک بار صغرا کے سینے سے چمٹ گیا. حسین کا پیغام آیا، زینب بہن قافلہ تیار، سیدانیوں سے کہو کہ باہر آئیں. رباب آگے آئیں صغرا کے قریب اور کہا، اصغر اصغر کو گود میں لینا چاہ. اصغر نے ماں سے منہ پھیر لیا، بہن کے آغوش میں گود میں منہ چھپائے لیتا. رباب کہتی رہی، اصغر میری گود میں آ جا، اصغر راضی نہیں ہوا. کلثوم آگے بڑھی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا. ام فروا جو ایک روایت کے مطابق علی اصغر کی خالہ بھی ہیں، رباب کی بڑی بہن، وہ آگے بڑھی. اصغر کسی کی بات نہیں سن رہا، حتیٰ یہ کہ کبرا آئی، حتیٰ یہ کہ سکینہ آئی، آخر میں زینب آ گئی. زینب آ گئی، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا، ہمیں یہاں سے چلنا ہے، دیر ہو رہی ہے. اور اصغر آج پھوپھی کی جانب بھی متوجہ نہیں ہے. ایسی فریاد صغرا کی اصغر کے دل کو لگی. تین بار حسین نے پیغام دیا، چوتھی بار خود آ گئے. کہا، زینب تجھے پتا ہے نا، میں نے کل بھی کہا تھا شریکت الحسین، تمہیں پتا ہے کہ ہمیں مغرب سے پہلے پہلے مدینے سے نکل جانا ہے، یہ دیر کیوں ہو رہی؟ زینب نے کہا، بھیا کیا کریں، اصغر نہیں مان رہا. حسین قریب آئے، کہا، اصغر بیٹا میری گود میں آ جا. اللہ معلوم آج کون سا دن تھا کہ اصغر باپ کی گود میں جانے کو بھی تیار نہیں. ایک جملہ حسین نے کہا، ایک وعدہ، ایک وعدہ، ایک جملہ. بھئی یہ جملہ سننا تھا کہ اصغر گویا تڑپ کر اچھل کر بہن کی گود سے باپ کی گود میں آ گئے. عجیب جملہ کہا میرے آقا حسین، اصغر بیٹا میں تجھے تیری بہن سے الگ نہ کرتا اور تجھے یہاں چھوڑ کے جاتا، لیکن جو جہاد مجھے کربلا میں کرنا ہے تیرے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا. اصغر تیرے خون ناحق کی مجھے کربلا میں ضرورت ہے، تو میرا سب سے بڑا مجاہد بننے والا ہے. اب جو اصغر نے سنا کہ بابا کا جہاد میرے بغیر مکمل نہیں ہوگا، تڑپ کے باپ کی گود میں آ گئے. شاید اسی لیے جب عصر عاشور حسین نے کہا تھا، حل من ناصرین ینصرونا، تو اصغر نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرا دیا تھا. بابا ابھی سے آپ نے کیوں حل من ناصر کہا؟ ابھی اصغر زندہ ہے، مدینے سے وعدہ کر کے آئے تھے اصغر کو میدان میں لے کے جائیے. اور حسین نے کہا، زینب بہن بیویوں سے کہو جلدی کریں، سواریاں آ چکی. کیا شان کی سواریاں تھیں، محلہ بنی آشم میں پہرا لگ چکا ہے، اونٹ لائے جا رہے ہیں، ہر اونٹ پہ محمل و ہماری ہے، ہر محمل پہ پردہ پڑا ہے، ہر بی بی باہر آتی ہے، اس کا وارث آگے بڑھتا ہے، سہارا دیتا ہے. ام فروا باہر آئیں، ایک بار قاسم دوڑ کے آگے بڑھے، ماں کو سہارا دے کے اونٹ پہ سوار کرایا. ایک بار ام لیلہ باہر آئیں، اکبر دوڑ کے آگے بڑھے، جوان بیٹے نے ماں کو سہارا دیا. ام کلثوم باہر آئیں، ام کلثوم کی کوئی اولاد نہیں ہے لیکن عباس چھوٹا بھائی اولاد کی مانند ہے، آگے بڑھا، کلثوم کو سہارا دے کے سوار کرایا. اور آخر میں ثانیہ زہرا، زینب کبریٰ بیت الشرف سے باہر آئیں. ایک طرف سے اکبر دوڑ کے آئے، ایک طرف سے عباس دوڑ کے آئے. حسین نے قریب آ کے کہا، نہیں اکبر بیٹا تم نہیں، عباس تم نہیں، زینب کو میں سوار کراؤں گا. یہ کہہ کے میرے آقا نے زینب کو سوار کرایا. 28 رجب کا قافلہ چلا، اور یہی بیویاں ہیں، 11 محرم کو کربلا کے میدان میں سواریاں لائی گئیں. نہ محملیں ہیں، نہ اماریاں ہیں، نہ پردے ہیں، نہ سوار کرانے والا کوئی ہے. ہر بیوی کو مدینہ یاد آ گیا. فروا نے مختل کو دیکھا، قاسم بیٹا تیری ماں سوار ہو رہی ہے، تو بھی سہارا نہ دے گا؟ لیلا نے اکبر کو آواز دی. بس زینب شریکت الحسین، زینب شریکت الحسین ایک بار آگے بڑھی, کہا بیویوں اگر اکبر نہ رہے, اگر عباس نہ رہے, اگر حسین نہ رہے تو گھبرانا نہیں, ابھی زینب زندہ ہے, میں ایک ایک کو سوار کراؤں گی. آؤ فروا تجھے میں سوار کراتی ہوں, آؤ لیلا تجھے میں سہارا دیتی ہوں, آؤ کلثوم ہر بیوی کو سوار کرا دیا. مگر آخر میں جب خود زینب کی باری آئی, دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کوئی سہارا دینے والا نہیں, فرات کو دیکھ کے آواز دی, عباس تیری زینب سوار ہو رہی ہے, تو بھی سہارا نہ دے گا. بھئی یہ جملہ سننا ہے, ایک بار میرا بیمار امام سجاد گلے میں توک ہے, ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے, پاؤں میں بیڑی ہے, آگے بڑا پھوپھی اماں, اگر چچا عباس نہ رہے, اگر بابا حسین نہ رہے, ابھی آپ کا بیٹا سجاد ہے, آئیے میں آپ کو سہارا دے کے سوار کرا دوں. اجرکم علی اللہ. خدا بندہ اہل بیت اطہار, کربلا والوں, ام المصائب زینب کبرا اور میرے مظلوم آقا سجاد و حسین کے ان مصائب کا واسطہ, آج کی مجلس میں جو مومنین و مومنات ہیں, ان کو, ان کی اولادوں کو, ان کے گھروں کو, ان کے گھر والوں کو, ان کے روزی کے ذرائع کو ہر آفت و پریشانی سے محفوظ فرما, دنیا بھر کے صاحبان ایمان کی حفاظت فرما, آج کی شب جمعہ صاحبان ایمان کی ساری پریشانیاں دور فرما, خاص طور پر جنہیں اولاد کا, روزی کا, صحت یا بیماری کا کوئی مسئلہ ہے, آج کی اس شب جمعہ کی برکتوں اور کربلا والوں کے ذکر کا واسطہ یہ مسائل کو حل فرما, ظہور امام زمانہ میں تاجیل فرما.